Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Tatsat. Tav Tattvam Najanami Kidrishosi Maheshwara यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यो वसौ सोऽहं यजामि ॐ शान्ति अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद ब्रह्म विद्या सर्वविद्यां प्रतिष्ठां वह विद्या जो सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है अर्थात वह ज्ञान जो सभी ज्ञानों का आधार है जिससे सभी ज्ञान समुद्भूत होते हैं प्रेरणा लेते हैं और जिस ज्ञान के बिना अन्य किसी ज्ञान का अस्तित्व नहीं है उसे ही ब्रह्म विद्या कहते उस ब्रह्म विद्या को जो अनादि है जो स्वयंभू अर्थात उसका बनाने वाला कोई नहीं है और उसी को ब्रह्म भी कहते हैं उसी को ज्ञान भी कहते हैं उसी को तत्व भी कहते हैं उसी के विषय में जब प्रश्न किया पहले उस ब्रह्म विद्या को आध्यात्मिक स्तर पर बतलाया फिर आदि दैविक और फिर भौतिक भौतिक स्तर में पौराणिक कथा का एक प्रतीक लेकर शौनक और अंगिरस अर्थात शिष्य और गुरु के माध्यम से ही ये विद्या प्राप्त होती है और ऐसे ही इसकी लगातार संतति जो इसकी संप्रदाय है इसका ऐसे ही चलता आ रहा है जब प्रश्न किया तो उन्होंने बतला दिया के अपरा और परा दो विद्याएं ये जो वेदांत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझाने के लिए वो शब्द ऐसे लगता है कि अलग अलग हैं जब उन पर आप विचार करते हैं तो एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है विभिन्न माध्यमों से वेदांत की एक बहुत प्रसिद्ध प्रक्रिया है अध्यारोप अपवाद अध्यारोप अपवाद का अर्थ होता है कि पहले रस्सी रस्सी में सांप सांप से भय और सांप की जगह किसी को वो दंड किसी को भूछेद्र किसी को माला किसी को कुछ नजर आए ये बतलाना कि रस्सी एक ही है उस पर सांप का आरोप है उस पर भूछिद्र का आरोप है उस पर अलग अलग फिर उसकी प्रतिक्रिया जैसा देखने वाला है उसको उस पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है कोई उसे डर रहा है कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और कोई उसे अपने पास हमेशा के लिए रखने की कोशिश कर रहा है और कोई उसे सचमुच में सर्प समझकर नाग पंचमी का दिन है दूध पिलाने की कोशिश कर रहा है तो फिर उसी की विभिन्न प्रक्रिया और फिर अंत में लाइट जला दी रस्सी नजर आ गई और कुछ भी नहीं रहा पहले उस पर अध्यारोप करना बतलाते रहना बतला ये भी ये भी ये भी और बाद में प्रकाश किया और सब गायब हो गए उसको अपवाद कहते तो ये तत्व को समझाने का एक ढंग है ऐसे ही जिसको उधर अध्यारोप कहते हैं यहां उसको अपरा विद्या कहते, विद्याओं गिनते चले जाओ, ये भी विद्या, ये भी ज्योतिष भी है, व्याकरण भी है, निरुक्त भी है, छंद भी है, तारक विद्या है, भुक्त विद्या है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, गिनते चले जाओ सब विद्याओं। और अंत में ये बतला देना कि ये सब की सब एक ही विद्या से निकली हुई हैं, ये उनका बाह्य रूप है और उसका तात्विक रूप पराविद्या है। ऐसा करके इन सब का अपवाद हो गया और हम मूल तत्व तक पहुंच गए। फिर भी भौतिक दृष्टि से केवल इतना ही ध्यान रखना होता है कि भौतिक, जितनी भी भौतिक का मतलब है जो आपके दैनिक व्यवहार में चीजें आए, भौतिक का अर्थ है जो आप अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जान सको, अंतःकरण के माध्यम से जिसकी कल्पना कर सको, कर्म इंद्रियों के माध्यम से जिनको प्राप्त कर सको या जहां तक पहुंच सको, ये जितना भी इनका क्षेत्र है, कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, अंतःकरण का, वो सब का सब भौतिक कहलाता है और उस सारे के सारे को अपरा विद्या के अंतर्गत ले ले। और उसका संबंध विज्ञान से है, उसका संबंध तथ्य से है और तथ्य से सत्य तक पहुंचते। एक और थोड़ा सा ध्यान रखें, सत्य और सत ये दोनों एक नहीं है। जब हम सत शब्द का प्रयोग करते हैं, सत्य, चित, आनंद, तो वहां उसका अर्थ सत्य नहीं होता। सत्यम, शिवम, सुंदरम ये अलग बात है, ये सत्य का व्यवहारिक रूप सत्य ऐसा तो कह सकते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंग्लिश में जैसे अंग्रेजी वाले दो शब्द हैं, एक है ट्रूथ और एक है रियलिटी। ट्रूथ और रियलिटी में अगर आप समझ सकते हो अंतर को, ट्रूथ विजिबल है, प्रैक्टिकल है, जीवन के काम में आए, लेकिन रियलिटी कुछ और। तो सत्य और सत या ट्रूथ और रियलिटी, इसमें अगर हर समय एक आपके मन के अंदर बनी रहे दोनों का अंतर, तो फिर हम ट्रूथ पर नहीं रुकेंगे। ज्ञान या ब्रह्म विद्या का संबंध रियलिटी से है, ट्रूथ से नहीं। और भौतिक विद्याएं जितनी भी हैं उनका संबंध ट्रूथ से, जिसको हम व्यवहार में सच कहते हैं कि ये सत्य है, ये ठीक है, वो सत्य हो सकता है लेकिन सत नहीं। सत तो रियलिटी तक पहुंचना है। देखो विज्ञान क्या करेगा, अपरा विद्या क्या करेगी? अपरा विद्या यह करेगी कि अगर एक वृक्ष है तो वृक्ष की खोज करते 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 बीज तक पहुंच जाएंगे। जो वृक्ष का सीड है, वृक्ष का जो बीज है, वो अंतम सत्य है विज्ञान। विज्ञान बीज से आगे की बात नहीं सोच सकता कि ये पूरे का पूरा वृक्ष एक बीज में समाया हुआ है। वो कहेंगे ये बीज ही ट्रूथ है, बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, ये उनका कहना। और ये बात अपेरेंटली बाह्य रूप से देखने में ठीक भी लगती, लेकिन उसी एक बीज में, एक बीज है वो हमने बोया, उसी से वृक्ष की जड़ भी बनेगी, उसी से वृक्ष का तना भी बनेगा, उसी से वृक्ष के पत्ते भी बनेंगे, उसी से वृक्ष के पत्तों में अलग अलग तरह के रंग भी होंगे, उसी में वृक्ष के फूल भी बनेंगे, उसी में कांटे भी बनेंगे और उसी में फल भी बनेगा। अब देखने में तो वृक्ष एक है, वो बीज एक है, बीज से आगे कुछ नहीं। अब अगर बीज को तोड़ के ये बतलाना पड़े कि इसमें से फूल किस चीज से बनेगा, इसमें से कांटा किस चीज से बनेगा, क्योंकि इसी में निहित है सारे, कांटा भी उसी में निहित है, रंग भी उसी में निहित है, और फल भी उसी में, स्वाद भी उसमें है, उसमें रूप भी है, उसमें रस भी है, उसमें गंध भी है, उसी बीज में। लेकिन विज्ञान अब वहां पर उस बीज को तोड़कर ये नहीं बतला सकता कि इस हिस्से से इसमें कांटे बनेंगे, इस हिस्से से इसका फूल बनेगा, इस हिस्से से इसका वो बनेगा। तो बीज सत्य तो है लेकिन सत्य नहीं है, ट्रूथ है, रियलिटी नहीं है कि वो वृक्ष का बनाने वाला वही। रियलिटी वो है जिसने उस बीज को बनाया। बीज कहां से बना, किसने बनाया, बीज नहीं भी होगा तब भी एक ना एक दिन फिर बीज बन जाएगा, कहां से बनेगा इस बात की आगे खोज नहीं करते, क्योंकि ये उस रियलिटी का, क्योंकि ये उस सत्य का स्वभाव है, चित्त होने के नाते वो बनता रहता है कुछ ना कुछ। जब सारे ही बीज खत्म हो जाए फिर भी बीज बन जाएगा, कहां से बन जाएगा, वो जहां से भी बनेगा उसको सत्य कहते, उसको तत्व कहते, जहां से भी हम उसको पकड़ सकते हैं उसको तत्व कहेंगे, उसी को ही अंतम रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी जिसको आप कहते, उसी का ही नाम ब्रह्म भी होगा, उसी की हम सब अभिव्यक्तियां हैं, हम सब भी उसी से ही बनते हैं, उसी में ही रहते हैं, वो कभी मिटता नहीं। इसलिए ये जो बाहर की शक्लें हैं, वो चाहे बीज रूप में हो चाहे वृक्ष रूप में हो, वो उनका कोई महत्व नहीं। जो ब्रह्म वेता है वो उस सत्य तक, उस रियलिटी तक पहुंचता है, और रियलिटी तक पहुंचकर वो आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, फिर कोई क्लेश नहीं रहता। बीज तक भी एक, आप वृक्ष पूरे के पूरे वृक्ष को एक बीज में देख सकते, अर्थात आप अगर भौतिक दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से एकत्व तक पहुंचो तो ज्यादा से ज्यादा बीज तक पहुंच जाओगे कि इस बीज में वृक्ष का सभी कुछ समाया हुआ है। लेकिन बीज फिर भिन्न भिन्न है, वट का बीज, मूली का बीज और तरह का है, गाजर का बीज और तरह का है, बैंगन का बीज और तरह का है, गुलाब का बीज और तरह का है, पपीते का बीज और तरह का है। बीज तक तो पहुंच गए लेकिन बीजों की विभिन्नता फिर बनी रहे, और जब तक द्वैत बना रहेगा, जब तक वो भिन्नता बनी रहेगी, तब तक वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी कि एक को जानकर सबको जान ली। हमने एक बीज को जानकर, वट वृक्ष के बीज को जानकर वट के बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन गुलाब का जानना फिर बाकी रह जाएगा, पपीते का जानना फिर बाकी रह जाएगा। हमें तो वो चाहिए जिस एक को जानकर गुलाब भी जाना जाए, पपीता भी जाना जाए, और कांटे भी समझ में आ जाए, फूल भी समझ में आ जाए। तो विज्ञान कितना भी, अपरा विद्या में कितना भी हम एकत्व की ओर जाए, देखो ये भी शब्द ध्यान में रखने वाले होते हैं, एकत्व, हम सब एक हैं। वेदांत एकत्व की बात नहीं करता, वेदांत अद्वितीयता की बात करता है। वेदांत का शब्द अद्वितीय है, एक नहीं है। अद्वितीय का मतलब होता है कि जिस जैसा दूसरा कोई नहीं, कोई दूसरा उसमें है ही नहीं, उसका कोई उदा, इसीलिए उसको सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, ऐसा अद्वितीयता की परिभाषा है कि अद्वितीय किसे कहते हैं, एक किसे कहते हैं। एक की परिभाषाएं अलग अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन एक का अर्थ ये नहीं होता एक दो चार भी एक एक के नोट हों, एक रुपए का नोट है वो दस भी हो सकते हैं, सब एक एक के नोट है। तो वो भी एक का है, वो भी एक का है, वो भी एक का है, लेकिन अद्वितीय में दूसरा होता ही नहीं। इसलिए वेदांत का शब्द अगर आप पकड़ेंगे तो वेदांत तक पहुंचेंगे, और अगर आप शब्द किसी दूसरे शास्त्र का, मैथमेटिक्स का शब्द लेंगे, वो अद्वितीयता को समझाने के लिए, जहां उपनिषद में, वेद में, जहां ऋषियों ने भी एक शब्द का प्रयोग किया, साथ में अद्वितीय भी लगा दिया, एकम एव अद्वितीय, साथ में उन्होंने देर नहीं लगाई उसमें एक लगाने की, एक शब्द का अपने आप में अर्थ होता है जो हर एक में अनुस्यूत हो, हर एक में जो जरूरी हो, जैसे दो तीन चार, इन हर एक में एक छुपा हुआ है, बिना एक के दो नहीं होते कभी भी। तीन लिखोगे उसमें भी एक है, चार कहोगे फिर उसमें भी एक है, एक नहीं है तो दो नहीं, एक के बिना दो नहीं होंगे, एक और एक मिलके दो हो जाएंगे उसमें भी एक रहेगा, तीन बनाने होंगे तो दो में एक और जोड़ देंगे तो तीन बन जाएगा, चार में एक और जोड़ोगे तो पांच बन जाएगा। इसलिए जब वेदांत में भी एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है वो तत्व जो हर एक में जुड़ा हुआ, जिसके बिना कोई दूसरा अंक बन ही नहीं सकता, वो तत्व, वो बात जो पपीते के बीज में भी है और गुलाब के बीज में भी है, मूली के बीज में भी है, घास के बीज में भी है, जीव के बीज में भी है, वो एक कोई चीज, वो चीज क्या है उसको हम नहीं कर सकते, उस चीज को तो कोई बतला ना पाया, लेकिन उस तक पहुंचने के ये इशारे, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही पहुंचेंगे, इसलिए शब्दों की सही अर्थ को जब तक हम नहीं पकड़ेंगे तो एक का मतलब एक से नहीं होता, एक का मतलब है जिसके बिना कोई दूसरा अंक ही नहीं। अगर आप शून्य भी कहोगे तो शून्य भी एक के अभाव को कहते हैं, नहीं तो शून्य भी नहीं बनेगा, अगर एक ना हो तो शून्य भी नहीं बन सकता, गणित वाले भी नहीं बना सकते। तो इसलिए शून्य हो चाहे संख्या हो, अभाव हो चाहे भाव हो, भाव अभाव दोनों में ही जो बराबरी से अनुस्यूत है, दोनों में ही जो जुड़ा हुआ है, या दोनों की सत्ता जिसकी सत्ता से है, जिस दोनों की ही सत्ता जिसकी सत्ता से है उसको एक कहते। ये तो एक शब्द का अर्थ, और अद्वितीय का मतलब है उस जैसा कोई दूसरा नहीं, वो सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद शून्य, उसमें कोई भेद शून्य का मतलब होता है निर्विशेष। निर्विशेष का आप ये भी अर्थ देख लें, निर्विशेष कहते हैं विशेष, वहां शब्द विशेष का प्रयोग होता है जहां भेद हो सके, अगर हम भेद कर सके कि ये राम प्रकाश जी हैं और ये सोनलाल है, तो ये जो भेद कैसे हुआ कि उसमें कोई विशेषता है, कोई खास कि उसकी शक्ल ऐसी है, उसकी आंख ऐसी है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका कद ऐसा है, तो उसमें कोई ऐसी चीज है जो उसको दूसरे से अलग करती, जहां पर दूसरे से अलग करने वाली कोई चीज हो उसको विशेष कहते हैं। और निर्विशेष का मतलब होता है कि अलग करने वाली कोई दूसरी चीज नहीं, जहां अलग करने वाली कोई चीज नहीं होती वहां ही सब कुछ होता है, सब कुछ का मतलब वहीं वो तत्व होता है जिसके बारे में शौनक जी ने प्रश्न किया है अंगिरस को, जहां कोई विशेषता ना हो, निर्विशेष, जो निर्विशेष होगा वही अदृश्य भी होगा, जैसे कल एक शब्द अदृश्य आया था जिसको लेके हम बात करने लगे, जहां विशेषता नहीं होगी, जहां आप चीजों को अलग नहीं कर सकोगे तो वो दिखलाई भी नहीं देगा, वो तत्व दिखलाई नहीं देगा। दृश्य जितने भी होंगे सब शेष होंगे, दिखलाई जो भी देगा वो अवयव युक्त होगा, वो विशेष होगा। आप इस बात को फिर ऐसा भी कह लें कि जहां हम निर्विशेष शब्द का प्रयोग करें या अदृश्य शब्द का प्रयोग करें उसकी कोई सीमा नहीं होगी, असीम होगा। जो भी दृश्य होगा, जो भी दिखलाई देगा वो ससीम होगा, लिमिटेड होगा, परिच्छिन्न होगा। और जिसको आप अदृश्य कहेंगे कि दिखलाई नहीं देता, उसकी सीमा कोई नहीं कि कितना दिखलाई नहीं देता, ये पूछा जाए अगर तो इसकी कोई सीमा नहीं। तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको सीमाओं में ना बांधा जा सके, उसी को तो ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म तो वही होगा ना जिसकी कोई सीमा नहीं, कितनी विशालता, कितनी। ये शब्द सुनने में नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, लेकिन सोचने में सकारात्मक है, पॉजिटिव। इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव वेदांत में नहीं होता कोई भी, क्योंकि जब तत्व ही एक है तो नकारात्मक क्या और सकारात्मक क्या, क्रोध क्या और प्रेम क्या, एक ही तत्व के दो रूप हैं। जिसकी नजर एक ही तत्व पर है उसके लिए ये घृणा, द्वेष, अपना, बेगाना, सच, झूठ, नाशवान, अविनाशी, ये शब्द कोई अर्थ नहीं रखते। ये शब्द तब तक ही हैं जब तक हम विशेष में हैं, जब तक हम भेद दृष्टि से देख रहे हैं। जब तक आप बीज तक पहुंचते हो तो भेद हैं, लेकिन उन सब बीजों में जो सत्ता है, जब उस सत्ता, उस शक्ति, उस ताकत, उस सत्य की ओर नजर जाएगी तो बीज भी नहीं रहेंगे। इसलिए राजनीतिज्ञ, समाजवादी जितनी भी कोशिश कर लें एकत्व की, वो एकता ला नहीं सकते कभी, किसी भी तरह से नहीं ला सकते, क्योंकि वो जो एकता ला रहे हैं वो विशेषता से जुड़ी हुई एकता है। आप ये कहते हो एकता को स्थापित करने के लिए, आप ये कहते हो कि दूसरे को भी ऐसे ही समझो जैसे अपने बेटे को, ये हम उपदेश देते। यहां पर ही भूल हो गई, यहां पर ही द्वैत आ गई। जहां पर आपने अपने को अलग और अपने बेटे को दूसरा मान लिया, द्वैत तो शुरू हो गया, आगे फिर इसके मिटने की कोई उम्मीद नहीं। जितना भी आप करते चले जाओ कि उसको भी अपने पड़ोसी को अपने भाई की तरह मानो, मैं जूं ही अपने को अलग और भाई को अलग किया, द्वैत शुरू हो गया। अब एकता होने की कोई संभावना नहीं। अब जितनी जितनी एकता के जोर लगाओगे उतनी उतना तफरका, उतना उतना भेद बढ़ता चला जाएगा, और जितना जितना आप और करोगे इसको गले लगा, जो ही आपने इस इदम को स्वीकार किया तो उसी समय तो द्वैत हो गया। अहम और इदम में अगर भेद हो गया, शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग करो तो इसे ही तो अहम और इदम कहते। तो अगर आप किसी को दूसरा स्वीकार कर लेते हो तो उसी समय द्वैत शुरू हो जाता है, और फिर जितना भी मर्जी करते चले जाओ, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, जब आपने नाम तीन गिनवा ही दिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो फिर ये भाई भाई कभी होंगे नहीं, ना हो सकते। ये तो अगर आप किसी गुरु नानक देव से पूछो, बुद्ध से पूछो, कि हिंदू सिख, उन्हें पता ही नहीं है कि हिंदू सिख ईसाई क्या होते, वो उस स्थिति पर पहुंचे हुए हैं अपने जीवन की कि जहां पर जाके सारे भेद खत्म हो चुके, उनकी दृष्टि तत्व पर, उनकी दृष्टि परा पर है, अपरा पर नहीं रही। दोई जब तक थी नजर आती थी लाखों सूरतें, जब हर ही में देखा उसे सारा तुफरका मिट गया। जब उस परम सत्ता की ओर नजर चली गई तो फिर कोई भेद रहा नहीं, उस सत्ता की ही ये विभिन्न अभिव्यक्तियां, इनमें से फिर किसी को अलग कह लेना। पानी तत्व रूप से अगर ये मान लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही सम्मिश्रण है, तो वो पानी फिर समुद्र का हो या झील का हो, कुएं का हो या गंदे नाले का हो, वो पानी की एक बूंद हो चाहे वो पानी का भरा हुआ ड्रम टैंकर हो, लेकिन गैसेज पर अगर नजर है तो फिर उसमें भेद कुछ नहीं है कि ये वहां का पानी है, ये यहां का पानी है, ये वहां का है, ये वहां का। व्यवहार की दृष्टि से एक बात दूसरी होगी, लेकिन व्यवहार कितना भी आप करते चले जाएं द्वैत नहीं रहेगा। देखो, आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हो, दो हैं, सीधी सी बात है, दो या आप बाहर खड़े हुए एक अंदर नजर आता, दो को देखते हुए भी आप में द्वैत बुद्धि नहीं है। दो नजर आ रहे हैं सामने, लेकिन फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो कि ये दो, क्यों? अगर किसी तरह से कोई सद संस्कार जागृत हो जाए, कई जगहों पर अब तो आश्रमों में भी, पहले तो आश्रमों में सिर्फ भगवान की मूर्ति और इसी तरह की बात होती थी, अब आश्रमों में भी मनोरंजन के बहुत सारे साधन वही आकर्षित करते हैं लोगों को। अब मूर्तियों की ओर लोग नहीं जाते आश्रमों में, जो हैं बाहर जो बड़े बड़े आश्रम हैं उधर जाओ तो मूर्ति भगवान की है अंदर। आप कहो वहां अंदर एक 25,000 वर्ष पहले की मूर्ति पड़ी हुई है, कोई नहीं देखने जाएगा। लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक से बनाई हुई राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं वो सारे देखने जाएंगे, वो कहे उधर देखो कैसी रासलीला हो रही। तो ये जो मनोरंजन के साधन हैं ये अब बहुत हो गए। तो हरिद्वार में पहले एक था, दो थे, देखो अब शीशे इस ढंग से लगाए होते हैं कि आप अंदर घुसो तो आपको अपनी ही शक्ल कम से कम 500 नजर आएगी। उस शीशे इस ढंग से फिट किए हुए हैं कि आप देखो उसमें तो दूर तक आप ही आप हो, कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा, कई हजारों की तादाद में आप बन रहे हो, लेकिन वो शक्ल एक जैसी है, जैसे आप हो वैसी नजर आ रही है, इसलिए आपको ये बना रहेगा। लेकिन अब ऐसे ऐसे भी शीशे हैं कि आप जैसे हो वैसे नजर नहीं आओगे, आप थोड़ा सा आगे चले जाओ तो किसी में आपकी नाक बहुत लंबी सी है, जमीन पर लग रही है, आगे आप जाके देखोगे तो कान लंबे लंबे हैं, किसी में आप छुट्टिकने से नजर आओगे बिल्कुल इतने, किसी शीशे में आप इतने ऊंचे से, आपकी शक्ल भी नहीं रहती। लेकिन वो सब देखकर भी आप में द्वैत बुद्धि नहीं होती, लगता है एक ही है, विभिन्न रूपों में एक ही।